मौर्य साम्राज्य 321 से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेल गोला मैसूर में अध्ययन समय बिताया और चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस भी कहा जाता था। इसी के समय में मेगास्थनी दरबार में आया इसके और 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। उसने इंडिका लिखी जो कि मौर्य साम्राज्य की दशा वर्णित करती है। इसके बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठा। इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में, जिसे पहले इसने सुषीम को दबाने और बाद में अशोक को भेजा। इसके बाद अशोक बैठा 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर, और जिस राजगद्दी पर बैठने के समय वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अशोक ने सांची के स्तूप का भी निर्माण करवाया। अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, 1837 में इन्होंने पढ़ा। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व तक। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक विरहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हथिया ली तथा शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था तथा उसके समय भागवत धर्म का विकास हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। शुंग वंश के पश्चात देवभूति ने कर्ण वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 3 सदी में सिमिक्को द्वारा की गई, इसे आंध्र भी कहते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। उसने कार्ले का चैत्य मंदिर एवं अमरावती स्तूप का निर्माण कराया। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त सीसे के सिक्के भी बहुत प्रचलित हुए। अब देखते हैं विदेशी आक्रमण, जिनमें हिंद यूनानी सबसे पहले आया, यानी इंडो ग्रीक। मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद के काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया, जिन्हें यवन कहते थे। यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ये क्रम है इनका। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश का श्रेय यूथिडेमस वंश के डेमेट्रियस प्रथम को है। उसने 183 ईसा पूर्व में शाकल को अपनी राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनंडर था। बौद्ध साहित्य में वह मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्से जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया और ये मध्य एशिया से आए थे। शकों को सीथियन भी कहते हैं। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने इन्हें मालवा के शकों को परास्त करके भगा दिया था। इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत में बसने वाले शकों ने स्वयं को क्षत्रप कहा। रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे महान शासक था। पल्लव यानी हिंद पार्थियन, शकों के बाद पार्थियाई लोगों का पश्चिम उत्तर भारत पर आधिपत्य हुआ। उनका मूल निवास स्थान ईरान था। भारतीय साहित्य में वे पल्लव कहलाए। पल्लव शासन का वास्तविक संस्थापक मिथ्रिडियस प्रथम था। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्नेस था। इस समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। कुषाण वंश, कुषाण यूचा कबीले की एक शाखा थी। इस वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कुजुल कटकेशस था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। चरक कनिष्क के राज्यवेद थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने इसी काल में की। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी और मथुरा थी। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य, जिसमें सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण काव्य प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसे हरिशीर्ण ने उत्कीर्ण किया है। समुद्रगुप्त कवि, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपरकर, वराहमिहिर, वराहमिहिर और वररुचि थे। चीनी यात्री फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। शक विजय के उपरांत शकारी की उपाधि धारण की और मेहरोली में लौह स्तंभ खुदवाकर विजय उत्सव मनाया। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्कंदगुप्त, इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। सुदर्शन झील के पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया। स्कंदगुप्त ने 466 में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजे थे। गुप्तकालीन प्रवृत्तियां, सामाजिक स्थिति, इसमें 4 वर्ण होते थे और वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। सती प्रथा का विवरण मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दास प्रथा विद्यमान थी। स्त्री शिक्षा का भी वर्णन मिलता है। आर्थिक स्थिति, चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। खिल एक ऐसी भूमि थी जो तो ज्योति नहीं जाती थी। कपड़े का निर्माण सर प्रमुख उद्योग था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था। स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। विदेशों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मसाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। सांस्कृतिक स्थिति, त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती थी। हिंदू धर्म के संप्रदाय वैष्णव और शैव विकसित थे। गुप्त साम्राज्य ने नागर शैली का आधार तैयार किया। कला और साहित्य के विकास के कारण इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख विद्वान थे। गुप्तोत्तर काल जिसमें हर्षवर्धन प्रमुख हैं। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन राजगद्दी पे बैठा, उसे शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था, उसने हर्ष चरित लिखी। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में पराजित किया। पालवंश का संस्थापक गोपाल था, राजधानी मुंगेर थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इसी के वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था परंतु नागभट्ट प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था।